नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का पुनः अभिवादन है, स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में जीवन में हर एक व्यक्ति के पास कभी न कभी किसी रूप में भी अहंकार आ ही जाता है। उसको छोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन छूटता नहीं है। उसका प्रभाव परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, हम जहाँ भी आसपास रहते हैं उन सबके ऊपर पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति खुद वो दुखी रहता है, उसके साथ वाले भी दुखी रहते हैं। मुझे एक दोहा याद आ रहा है, महान संत कबीरदास जी ने कहा है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे प्रेम खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। भावार्थ यही है कि प्रेम का जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है। जो राहगीर होते हैं उन्हें उनका फल का भी लाभ नहीं मिलता, उनका छाया भी नहीं मिल पाता। ठीक इसी प्रकार से कई व्यक्ति बहुत ऊंचे पदों पर आसीन तो हो जाते हैं लेकिन उनका अहंकार हर समय झलकता है। कैसे हम इससे मुक्त हो, कैसे इस पर विजय प्राप्त करें, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी, आप तीनों का स्वागत है, अभिवादन है। गीता बहन जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर अहंकार तो है और वो कुट कुट करके भरा हुआ है हर व्यक्ति के पास। आखिर अहंकार कहाँ कहाँ दिखता है और उस अहंकार का साइड इफेक्ट, उसका प्रभाव समाज पर, परिवार पर कितना पड़ता है?
देखिए, अहंकार एक ऐसी मन की बीमारी है जो हमारे मन की शक्तियों को, टैलेंट्स को, योग्यताओं पर तो भारी पड़ती ही है, साथ में जो सबसे बड़ा खजाना है मन का चैन, उसे भी खत्म करता है। जो ईगो वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास अहम होता है, मैंपन होता है, वो अपने को ही केवल दर्शाना जानता है सबके बीच में। उसकी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो उसे अकेला कर देती हैं और ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। वो भरपूरता का एक शो तो करता है, मैं भरपूर हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन अंदरूनी रूप से वो खोखला होता है। एक ईगो वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, वो ये चाहता है मेरा मान शान हो, मुझे सम्मान मिले, और यदि उसके अपोजिट कोई भी काम हो जाए, उसे मान शान ना मिले, उसे सम्मान ना मिले, तो वो बिल्कुल टूट जाता है। अगर ईगो पे थोड़ा सा भी प्रहार हुआ, छोटा सा भी, तो वो पूरी तरह टूट जाता है। इसीलिए जीवन में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जिस पेड़ पर लचीली टहनियां होती हैं, वो बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह लेती है, झूलने लगती है, यूं कहें कि वो उस तूफान में इंजॉय करती हैं झूल झूल कर, लचीली टहनियां। लेकिन जो वृक्ष अकड़े खड़े रहते हैं, जिनमें लचीलापन नहीं है, एक छोटा सा तूफान, एक छोटा सा हवा का झोंका भी उन्हें तोड़ कर चला जाता है। सामना करने की शक्ति किसी भी सिचुएशन की वो नहीं रहती, और उसका वार सीधा उसके हार्ट पर होता है और उसकी आत्मा पर होता है। जो वो अंदर ही अंदर इस तरह से टूट जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है कि उसे अपने हर दरवाजे बंद दिखाई देने लगते हैं।
कभी कभी एक अहंकारी व्यक्ति कहीं, अगर उसको लगता है कि मेरा पद है, मेरा पोजीशन है, लोग मुझे सलाम करे, लोग मुझे मेरा जय जयकार करे, तो इसमें कुछ गलत भी तो नहीं लगता?
जरूर करे जय जयकार, पर वो बिना अहंकार के भी तो हो सकता है ना। आप एक बात बताइए, मैं आपको भयभीत करके, अपने पद पोजीशन से डरा करके झुकाऊं, और दूसरा कारण ये है कि मैं अपनी महानताओं के सामने आपको झुकाऊं। अहंकार से भी झुका सकती हूँ, लेकिन वो जो सम्मान होगा वो रियल सम्मान नहीं होगा। मैं केवल डर के, मैं केवल भयभीत होकर के आपके सामने सर झुका रही हूँ, लेकिन यदि मेरे अंदर महानताएं हैं तो लोग उनके सामने खुद को खुद नतमस्तक हो जाएंगे। आज हमारे इतनी देवी देवताएं हैं, निरहंकारी हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, और भी 33 करोड़ देवी देवताएं, हमारे गुरु नानक साहिब हैं, या हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, महात्मा बुद्ध हैं, क्या आपको इनमें ईगो दिखता है? तो अगर अहंकार है तो वहां डर करके तो आप सम्मान ले सकते हो, पर जो दिल का रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलेगा। एक भय का सम्मान मिलेगा, दिल का नहीं मिलेगा। चाहिए क्या? अगर मैं झुकाऊं तो मैं दिल से झुकाऊं ना, मैं अपनी महानताओं के सामने झुकाऊं, मैं अपने ईगो के या अपने भय के सामने उनको विवश ना करूं कि तुम झुको मेरे सामने। वो मैं ले नहीं रही हूं, मांग रही हूं, छीन रही हूं उनसे, छीन करके ले रही हूं। एक होता है छीन कर लेना, एक होता है स्वेच्छा से देना। तो स्वेच्छा से देना अच्छा लगता है या छीन कर लेना अच्छा लगता है, क्या लगेगा?
स्वेच्छा।
तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए कि मुझे लोग स्वेच्छा से दे या छीन कर मैं लेती रहूं, जबरदस्ती लेती हूं, दो दो और नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने अवरोध पैदा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे मार्ग में जो है बाधा बनूंगा, तुम्हारे कामों में टांग अड़ाऊंगा, तुम्हारे सफलता नहीं मिलने दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन रोक दूंगा, या मेरी तुमसे नहीं बनी तो मैं ऐसा कर दूंगा। उसके साइड इफेक्ट फिर कितने होते हैं।
तो कहा भी गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। वास्तव में जो निरहंकारी व्यक्ति रहता है वो बहुत ही ज्यादा निर्माण और सबका प्रिय बन जाता है। यदि किसी मान शान चाहिए तो वो अहंकार के दबदबा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये गुणों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और दिलों में राज्य किया जा सकता है इसका।
लेकिन आजकल तो हम समाज में यही देखते हैं कि जिसका दबदबा है उनका ही ज्यादा बोलबाला होता है,
वो थोड़े समय के लिए होता है। बाकी तो विजय तो उन्हीं की होती है जो सदा निर्माण है, सहयोगी है, स्नेही है, दिलों पर राज्य तो वही कर सकते हैं।
लेकिन संजय भाई, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि अगर लोग ये कहते हैं कि अरे यार दब के रहोगे दलोगा और दबाते रहेंगे, थोड़ा तो दिखाना पड़ता है, थोड़ा तो अपना प्रभाव छोड़ना पड़ता है, तो क्या ये भी अहंकार है? ऐसा भी नहीं करना चाहिए लोगों को?
नहीं, ये भी एक सीमा तक रहता है, बाद में ये भी खत्म हो जाता है।
भाई जी, मैं थोड़ा और इसके ऊपर आपसे, क्योंकि आपको तो बहुत अनुभव है, और जानना चाहता हूँ। एक परिवार का मुखिया है, दिन भर अपने कारोबार से घर में आता है। एक ऑफिस का मुखिया है, बॉस है, वो अपने ऑफिस में आता है और वो आते ही सोचता है कि सब लोग मुझे दुआ सलाम करे, सब लोग मेरे को पूछे, मेरे अनुसार कार्य करे। एक परिवार का मुखिया आकर के जैसे ही घर में प्रवेश करता है और सोचता है कि सब मेरे अनुसार घर में कारोबार ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या वही अहंकार है और क्या ये भी गलत है कि उसको ऐसा भी नहीं करना चाहिए?
हाँ, गीताबेन की बात सुनकर और संजय की भी बात सुनकर मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम याद आए। कैसे हैं कि जब वो प्रेसिडेंट हाउस में गए तो अपनी एक अटैची लेकर,
जी जी जी, मैंने,
और जब बाहर आए, जब समाप्त किया उन्होंने अपना राष्ट्रपति का काल, जब वो विदाई लेकर बाहर गए तो भी एक अटैची के साथ बाहर आए। ऐसे महान पुरुष को, जिसको मैं तो एक सच्चा योगी मानता हूँ, वैज्ञानिक योगी, आइंस्टाइन के बारे में भी लोग कहते हैं वो भी एक योगी था, पर हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम सम्मान के पात्र, भारत में तो उनका बहुत सम्मान है सचमुच। ये निरहंकारी था, निर्माण था, और हमारे बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर चीज कही थी, जो निर्माण चित्त है उसी में निर्माण करने की शक्ति है, वो क्रिएट कर सकता है। तो देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कितना क्रिएट किया, एक नवयुग ला दिया भारत में, विज्ञान के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, हमारे भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र।
ऐसे कोई गिले चुनिंग तो होते हैं भाई, हाँ, लोग तो ऐसे होते
मैं
हैं।
तो यही सोचता हूँ कि हर समाज में कुछ ना कुछ लोग ऐसे योग्य होते भी निरहंकारी होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो योग्य नहीं है और बहुत भोला है, उसकी बात अलग, लेकिन योग्य होते हुए निराभिमानी होना, तो मैं देखता हूँ पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं, तो समाज के और क्षेत्रों में भी हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं, कई अधिकारी भी हमें ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल इससे मुक्त रहते हैं। उन्होंने रियलाइज कर लिया होता कि नहीं, हम किसी भी पद पर बैठे हैं इट्स ओके, लेकिन हमारा ये एक परिवार की तो है ना, एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लोग सोचते हैं मैं डायरेक्टर हूँ, ये मेरा परिवार है, सब लोग काम कर रहे हैं साथ में, तो मेरा परिवार है।
लेकिन कभी कभी मैं छोटा और दूसरा पहलू भी देखता हूँ भाई जी, की कभी कभी जब व्यक्ति एकदम नम्रचित हो जाता है तो उसका फिर गलत फायदा उठाने लगता
है। वो है, कुछ लोग ऐसे संसार में हैं अवश्य कि दूसरों को फिर दबाने लगते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी तो बहुत मदद करती है, अगर हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने अंदर ये भाव पैदा कर लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ, और ये सब जो मेरे ऑफिस में बैठे हैं ये भी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, तो उसका ये स्वमान लोगों के मन में उसके लिए एक निर्मल प्रेम की जागृति करेगा, एक सम्मान की जागृति करेगा। इसलिए भगवान ने कहा जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। तो ये हम अप्लाई करें इसको, तो हमारी निरहंकारिता बिना स्वमान के ना हो, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम स्वमान खो के निराभिमानी बनते हैं तो कहीं कहीं वो निरहंकारिता कमजोरी बन जाती है जिसका दूसरे लोग मिसयूज करने लगते हैं, ये भी होता है कहीं कहीं, तो हम कहीं ना कहीं सहन भी करते हैं। लेकिन अगर हम निरहंकारी बन जाते हैं तो प्राप्तियां ज्यादा हैं, लोस बहुत कम। मान लो 95% प्राप्तियां हैं, 5% लोग, तो दैट्स नेग्लिजिबल, उसको हमें महत्व नहीं देना चाहिए। पर मुझे गीता बहन की बात सुन के एक दो चीजें और याद आ रही थी। जो व्यक्ति अभिमानी होता है ना, उसको अपने अवगुण दिखाई नहीं देते, उसको सदैव दूसरों में अवगुण दिखाई देते, ये इसका एक और निगेटिव इफेक्ट होता है। तो मैं सोच रहा था कि अभिमान जैसे तना है, उसका बीज है बॉडी कॉन्शियसनेस, और इस तने की ये शाखाएं हैं जो गीता बहन सब सुना रही थी, तो ये एक विकृत सा पेड़ बन जाता है मनुष्य के ऊपर, जिसकी छाया नहीं होती बल्कि जिसे गर्मी मिलती है सदैव, जिसे वातावरण भारी हुआ रहता है। तो हम सभी को ये लक्ष्य तो बना ही लेना चाहिए कि हमें इससे मुक्त होना है।
आपने कहा कि दूसरे का अवगुण हमें दिखाई देता है और हमारा अवगुण कई बार दिखाई नहीं देता है, तो आखिर अपना अवगुण कब दिखाई देगा, उसके ऊपर कैसे महसूस?
जब मनुष्य निरहंकारी हो जाता है, जब मनुष्य सेल्फ रेस्पेक्ट में स्थित हो जाता है। देखिए, मैं एक महान आत्मा हूँ, हम एक ही चीज को लें। जब हमें लगने लगेगा मैं महान हूँ, तो छोटा सा काला दाग भी दिखाई देगा, नहीं मैं महान हूँ, तो ये मुझ में नहीं होना चाहिए।
ये सोचने भर से कि मैं महान हूँ इतने में आ जाएगा,
बहुत अच्छी फीलिंग होगी। और कई लोग इसको भी अभिमान मान लेते हैं, सर ये अभिमान नहीं है, ये स्वमान है अभिमान को नष्ट करने वाला।
जी 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 जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मन के अंदर जो अभिमान आ जाता है, तो सचमुच ये अभिमान तो वैसे नुकसान तो करता ही है, लेकिन उस अभिमान के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे जाने कि मेरे अंदर ये अभिमान भी आ रहा है?
इसमें तो परिवर्तन शक्ति बहुत काम करती है।
हाँ।
जिसके अंदर परिवर्तन शक्ति है, कुछ क्रिएटिविटी है, वो व्यक्ति फटाफट अपने लिए नई राहें ढूंढ लेता है। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो दो बच्चे और उनकी माँ वो भी यात्रा कर रहे थे, तो मेरे सामने वाले सीट पर ही बैठे थे, तो बच्चे कुछ अशांति कर रहे थे, तो उनकी माँ ने उनको एक खिलौना निकाल के दिया कि आप दोनों खेलो। तो छोटा कहने लगा कि मुझे चाहिए, बड़ा कहने लगा मुझे, तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। तो माँ ने कहा कि बच्चे ऐसा करो, बड़े वाले को कहा कि तुम छोटे को दे दो, क्योंकि तू बड़ा है ना, तो छोटे को दे दो। तो उन्होंने छोटे बच्चे को दिया, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने लगा अपनी माँ से कि माँ मैं तो हमेशा बड़ा रहूंगा, तो हमेशा क्या मुझे ही परिवर्तन करना है? तब फिर मैंने उस बच्चे को देखा कि मैंने उनको बुला लिया अपने पास, मैं बोला आओ हम लोग दूसरा कुछ गेम खेलते हैं। तो हमने कुछ क्रिएट किया उस समय, तो हम दूसरा गेम खेलने लगे, चाहे हाथ से ऐसे कर रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं या अंगूठा ऐसे डन कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग दोनों को देखकर, वो जो छोटा बच्चा था वो उसका ध्यान खिलौने से हट गया, वो हम लोगों को ही देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो वो भी खिलौना छोड़कर इधर आ गया और खिलौना कहा बड़े को कि तू ये रख, मैं इनके साथ खेलूंगा। तो ये क्रिएटिविटी हर व्यक्ति यदि करना सीख जाए तो वो इस पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकता है और धीरे धीरे अपने जीवन को खुशियों से फिर से भर सकता।
तो मेरे अंदर ईगो है लेकिन किसके अभाव में है, ऐसी कौन सी मिसिंग है जिसके अभाव में ये ईगो है, तो वो मुझे उसका एक सही एक पॉजिटिव पहलू ढूंढना है।
जी, 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 जी।
मेरे अंदर आत्मीयता नहीं है, मेरे अंदर अपनापन नहीं है, मेरे अंदर सहज भाव शुभ भाव नहीं है, मेरे अंदर इजी नेचर नहीं है, नेचर मेरी बहुत हार्ड है, इसका मतलब ईगो है। मेरे अंदर आत्मीयता नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर ईगो है। मेरे अंदर अपनापन नहीं है, मैं भेदभाव रखती हूँ, परायापन रखती हूँ, दूरियां रखती हूँ, मनमुटाव रखती हूँ, इंसान को इंसान नहीं समझती हूँ, छोटा बड़ा समझती हूँ, गरीब अमीर देख रही हूँ, फिर उनके चेहरे देख करके मेरा व्यवहार, मेरी बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर मैंपन है। यदि मुझे ईगो को खत्म करना है तो ईगो पे बार बार फोकस ना करके उसे चेक किया, समझ लिया, अब उसको भरने की कोशिश करनी है तो मैं परसेंटेज में इन गुणों को अपने अंदर अप्लाई करूं, आत्मीयता बढ़ाऊं, अपनापन बढ़ाऊं, लोगों के लिए सहज भाव बढ़ाऊं और साथ में अपनी नेचर को इजी बनाऊं, सरल नेचर बनाऊं। जितना मैं सरल होंगी उतनी सुखी बन जाऊंगी और इतना ही सुख मैं दुनिया को देती चलूंगी। इस तरह से इस ईगो पर हम काफी हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवारों में एक खुशी का माहौल बना सकते हैं। देखिए आज छोटी छोटी बातों में परिवार टूट रही है। मैं कहीं पढ़ रही थी तो एक विलायत का, विदेश का एक न्यूज है कि 80 साल के बूढ़े व्यक्ति ने 82 साल की बूढ़ी अपनी पत्नी को तलाक दिया। अब मैं सोचने लगी इस उम्र में भाई उनकी शादी हुई होगी तब वो 20 22 25 साल के रहे होंगे, इतना लॉन्ग टाइम रहने के बाद इस पड़ाव पर आकर के जब दोनों बेसहारा जैसे हो गए हैं, तब एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे से दूरियां बना रही है, तलाक दे रही है, ऐसी कौन सी बात होगी जो इस एज में तलाक देने की पड़ गई। तो बात आगे सामने आई एक कुर्सी, एक कुर्सी जिस पे अक्सर करके वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा करता था। अब बूढ़ी अम्मा ने जिद पकड़ ली, ये कुर्सी मुझे चाहिए, इस कुर्सी पे मैं बैठूंगी। वो कुर्सी केवल उनके तलाक का कारण बन गई। अब कोर्ट के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है, जितनी प्रॉपर्टी थी सब बैठ गई, सब में वे दोनों सेटिस्फाई हो गए, लेकिन जब मैटर कुर्सी का आया
इसमें कुर्सी अटक गई,
तो फिर कोर्ट भी सोच में पड़ गया ये कुर्सी किसको दे। और वो बूढ़ा कहते हैं मुझे दो, बूढ़ी कहती नहीं, मैं इससे तो मैंने अपना संबंध खत्म कर लिया, इससे मेरा अधिकार है, ये कुर्सी मुझे चाहिए। तो देखिए कहां हम उलझे हो गए, क्या तमाशा बना के रखा हुआ हमने अपने रिलेशन का, एक छोटी सी चीज का, एक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे हम 50 कुर्सी और बना सकते हैं, उस कुर्सी को लेके हमने अपने रिलेशन को, जो हमारा इतना अनमोल रिश्ता था, इतना स्वीट रिलेशन था, उसको दांव पे लगा दिया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, वैल्यू लेस ईगो, हमारी वैल्यू गुण खुशी पर भारी पड़ जाता है।
अगर हर व्यक्ति इस चीज पे चिंतन करे कि ईगो या और कोई चीज वो तो वैल्यू लेस है, उनकी कोई कीमत नहीं, उसके कारण हम अपनी अति मूल्यवान खुशी को नष्ट करें तो बुद्धिमानी नहीं है। मैं अपने सभी भाई बहनों से, दर्शकों से कहूंगा कि इस पे चिंतन करें कि हमारे जीवन में कितनी वैल्यूलेस बातें आती हैं जिनकी कीमत एक रुपया भी नहीं होती, और हम अपने कितने अनमोल संकल्पों को नष्ट कर डालते हैं, जीवन पर उसका इफेक्ट बना लेते हैं और चीजें एकदम दब जाती हैं। और सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, सफलता के मार्ग पे कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है लेकिन किसी चीज का यदि प्रेशर अपने ऊपर रख लिया तो भारी पड़ जाएगा। मुझे याद आ रही है ईगो की बात, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होता जा रहा था, अभिमान आ गया उसको, जल्दी नहीं आया, थोड़ा बाद में आया, 40 साल के बाद आया कि वाह मैं जो काम करता हूँ सफलता मुझे प्राप्त हो जाता
है, स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है।
ये मैं कह रहा था कि 40-42 साल के बाद नेचुरल रूप से उसके मन में ये फीलिंग होने लगी कि मैं जो काम हाथ में लूंगा उसमें सफलता होगी। मेरे पास भी वो आया, उसने अपनी ये बात लिखी, झलक रहा था कि थोड़ा ईगो अंदर आ गया, मैंने कहा नहीं, ये सोचो परमात्मा ने मुझे ये सफलता दिलाई। उसने कहा परमात्मा ने कैसे दिलाई, मैं योग्य था ना, मैंने मेहनत की है ना, परमात्मा का इसमें क्या रोल है, मैंने खुद सफलता अर्जित की है। उसकी ये जिद देख के मैंने कहा ठीक है, तो भाई आगे बढ़ो जिंदगी में और सफल हो जाओ, लेकिन 5-7 साल के बाद ही उसका सफलता का मार्ग डूब गया
जी।
अब वो जो कदम आगे बढ़ाए वहाँ सफलता का काला पर्दा उसके सामने दिखाई देता था, फिर दूसरी तरफ हमने कदम आगे बढ़ाए वहाँ भी एक असफलता की दीवार उसके सामने खड़ी थी, फिर वो मेरे पास आए। मैंने कहा यही तो बात है, अगर आप तभी स्वीकार कर लेते कि मेरे साथ परमात्मा कृपा है, प्रभु की कृपा मुझ पर बनी हुई है, वो अपनी शक्तियां मुझे दे रहा है, ये सफलता का वरदान ही उससे मुझे मिला है, तो शायद आपकी सफलता को आप बहुत एंजॉय करते और आपकी सफलता से दूसरे लोगों को आपके लिए ईर्ष्या भी ना होती, क्योंकि अब वो ईर्ष्या का शिकार हो चुका
जी,
और यही कारण हुआ उसकी असफलता का।
हाँ,
जब वो ज्यादा बखान करने लगा, जब लोगों को लगने लगा इसमें ईगो बहुत आ गया है, तो सबकी निगेटिव फीलिंग्स उसकी ओर बढ़ गई और इसने उसके सफलता के मार्ग को रोक दिया। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि देखिए, जो कुछ हमारे पास योग्यताएं हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी बात है, या आपकी क्वालिटी है, नो डाउट, आपने जीवन में मेहनत की है, लेकिन उसको बिल्कुल न भूलें जिसने आपको ये बल दिया है, बुद्धि दी है। बुद्धिमान लोग तो बहुत हैं, साइंस के फील्ड में बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सत्य यही है और ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा कृपा के बिना, उसकी शक्तियां मिलने के बिना, उसके वरदान मिलने के बिना हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर नहीं होते। तो हमने तो इस जीवन में ये सीखा था कि जो कुछ हमारे पास है, चाहे बुद्धि है, बल है, सफलता है, हमें बहुत मान शान मिल रहा है, हमारे चारों बहुत लोग हैं, हमने सम्मान अर्जित किया है, या हम बहुत धनवान बन गए हैं, ये सब प्रभु देन है।
प्रभु देन है तो शुक्रिया तो बनता है। एक बार हम दिल से उसको धन्यवाद तो बोले। 24 घंटे में जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे मिला है, अगर मैं खुले दिल से भगवान का शुक्रिया बोलने लगूं, तो भी ये ईगो डाउन हो सकता है।
जी जी, अहंकार पर विजय प्राप्त करने का एक माध्यम है कि ईश्वर का धन्यवाद करते रहे।
आइए हम सभी रोज सवेरे उठकर अपने परम पिता को धन्यवाद दिया करें कि हे प्रभु, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया।
सवेरे ही करें ये सब और उसके बाद फिर अपने मन को शांत करके आगे बढ़ें। भाई साहब, आपने बहुत सुंदर बात बताया कि सवेरे हम ईश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन सवेरे ही क्यों? मेरा ऐसा विचार है कि जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर को, शाम को, रात को सोने से पहले, कभी भी उस ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें।
बिल्कुल ठीक।
आप तीनों समय निकाल करके अपने विचार रखें, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने विशेष रूप से इस चर्चा में जानकारी ली कि सच में मनुष्य के अंदर बहुत गुण है, लेकिन उन गुणों का विकास करना हमें आना चाहिए। कई बार एक छोटा सा अहंकार मानव जीवन के रास्ते में रोड़ा बन जाता है, परिवार विघटन के कारण बन जाते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, ग्रीस यूनान देश है, जहां पर एक महान संत हुए हैं, दार्शनिक विचारक हुए हैं, और उनका नाम सुकरात। तो सुकरात एक बार अपने शहर में बाहर निकल रहे थे, रास्ते चलते चलते बहुत दूर निकल गए तो सामने से एक शराबी आ रहा था, और शराबी शराब के नशे में बहुत लड़खड़ा रहा था। तो ये देख करके सुकरात के मन में आया, अरे कहीं गिर ना जाए। उसने प्यार से बोला, अरे भैया संभल के चलो, कहीं गिर जाओगे गड्ढे में तो आपको चोट लग जाएगी। तो उस शराबी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं तो शराबी हूं, तुम संभल करके चलो, क्योंकि तुम्हें सारा संसार जानता है, तुम दार्शनिक हो, विचारक हो, मैं गिरूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप गिरोगे तो सारा संसार आपको जान जाएगा, इसलिए पहले आप भी संभलो। सचमुच हम सभी को इस जीवन रूपी यात्रा में, इस सफर में पग पग संभल करके चलने की जरूरत है, अपने आप को एक बार झांकने की जरूरत है। तो सचमुच ये जीवन रूपी यात्रा सुखमय बन सकता है, आनंदमय बन सकता है, जीवन में सुगंध आ सकता है। इन्हीं विचारों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सब दर्शकों के लिए। अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करें, इसको अच्छी तरह से चेक करें, इस जीवन से सदा सदा के लिए समाप्त करें। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।